جزاكم الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو اسی آیت کی تفسیر ہم پچھلی کلاس میں بھی پڑھنا شروع کر چکے تھے، تو اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. پیج نمبر ابھی ہم ہیں، کون سا پیج نمبر تھا؟ 414. اگر ہدایت اللہ صاحب کا بھی لکھ دیں یا چنے جدا نے لکھ دیا، دونوں نے لکھ دیا. والیوم 8 معرفت القرآن، یہ بھی لکھ دیں تو کوئی اگر نیا ہو اس کو یہ بھی پتہ لگ جائے کتاب کون سی ہے. تو اس آیت میں ایک بات، یعنی بسائڈز معرف مسائل کے، یہ بس آپ کے سامنے ریمائنڈ کرانی تھی کہ جیسے اس آیت میں ہے نا، یا ایوہ النبی یو، کہ اے نبی، ٹھیک ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن میں جب بھی خطاب کیا ہے، ایڈریس کیا ہے ڈائریکٹلی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایڈریس نہیں کیا ہے. محمد کا نام تو آتا ہے قرآن کے اندر چار جگہوں پر، ٹھیک ہے، لیکن جہاں ایڈریسنگ ہوئی ہے نا، تو وہاں پر یا ایوہ النبی، یعنی اے نبی، یا ایوہ المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، یا ایوہ المدثر، ٹھیک ہے، لحاف میں اپنے آپ کو لپیٹنے والے، تو اس طریقے سے مخاطب کیا ہے. اور یہ جو انداز ہوتا ہے، اس انداز کے اندر محبت اور رسپیکٹ زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو جو لوگ فرسٹ نیم بیسس کے عادی ہوتے ہیں نا، جیسے ویسٹرن سویلائزیشن کے اندر فرسٹ نیم بیسس پر باپ کو بھی پکاریں گے، تو جارج، باپ کا نام جارج ہے تو بیٹا جو ہے وہ جارج سے پکارے گا، ٹھیک ہے. یعنی ہر کوئی ایسا نہیں کرتا وہاں پر بھی، یعنی ڈیڈ بھی کہتے ہیں، فادر تو خیر نہیں کہتے، ڈیڈ کہتے ہیں تو امریکہ کے اندر، لیکن فرسٹ نیم بیسس پہ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، حتیٰ کہ بڑے بھائی بہن، چھوٹے، ہر کسی کو نا. تو اب اس کلچر سے جو زیادہ متاثر ہوگا، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں بھی رہنے والا ہو لیکن متاثر اس کلچر سے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ایسے ہی لگے گا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ نیم بیسس پہ کیوں نہیں پکارا، ٹھیک ہے. تو پکارنا جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے فرسٹ نیم بیسس پر، اور جب اس کو فرسٹ نیم بیسس نظر نہیں آئے گا تو پھر وہ الٹی سیدھی باتیں سوچے گا. تو جیسے آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ کسی نے کسی پاکستانی مسلمان لڑکے کو اس بنیاد پر عیسائی بنا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام جو ہے وہ زیادہ آتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کم آتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک اپنی طرف سے لاجک دے کر کے، اور وہ بندہ جو ہے وہ اس بیسس کے اوپر مسلمان، یعنی اسلام کو اس نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے. تو اس کا جواب یہی ہے جو علماء حضرات فرماتے ہیں کہ یعنی فرسٹ نیم بیسس کے اوپر ایڈریس کرنا جو ہے اس کے اندر ایکچولی زیادہ رسپیکٹ اور محبت نہیں ہوتی، بلکہ زیادہ محبت اس میں ہوتی ہے. کیا حضرت ایسا کشمیر میں بھی ہوا؟ اچھا ہاں، ظاہر ہے جہاں پہ علماء سے جو تعلق کمزور ہوگا تو اب دوسروں کے لیے میدان خالی ہو جاتا ہے نا، میدان صاف ہوتا ہے کہ وہ آ کر کے جو بھی الٹی سیدھی لاجک دے کر کے مسلمانوں کو اسلام سے محروم کر سکیں. تو علماء سے اپنا تعلق مضبوط بنانا جو ہے نا، وہی اس قسم کے فتنوں سے بچنے کا طریقہ ہوتا ہے. اچھا، تو اب ہم پڑھ رہے تھے پیج نمبر 414 کے اوپر، لاسٹ ٹو پیراگرافس ہمارے رہتے تھے، تو وہاں سے شروع کرتے ہیں. بات کیا چل رہی تھی کہ جب یعنی اس آیت میں جیسے کہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جا اکل مومنات, جب آپ کے پاس آ جائیں ایمان والیاں, یبا یہ انکا بیعت کرنے کو آپ سے, اللہ یشرک باللہ شیئن, کہ وہ شرک نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کو بھی, یعنی شریک نہیں ٹھہرائیں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو بھی, ولا یسرقنا اور وہ چوری نہیں کریں گی, ولا یزنینا اور وہ زنا نہیں کریں گی, ولا یقتلنا اولادہن اور وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی, ولا یأتینا ببہتان یفترینہ بین ایدیہن اور بہتان نہیں باندھیں گی یعنی اپنے ہاتھوں اور پیروں کے جو عمل ہیں نا ان کے اندر کسی کے اوپر بہتان نہیں لگائیں گی, ولا یعصینک فی معروف اور وہ معروف باتوں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی, یعنی آپ جو نیکی کی باتوں کا حکم کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نیکی ہی کی باتوں کا حکم کرتے ہیں, برائی کی باتوں کا تو حکم کرتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کوالٹی بھی بتا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم کرتے ہیں نا تو وہ معروف ہی باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کی وہ نافرمانی نہیں کریں گی. فبائعهن, تو آپ ان سے بیعت کر لیجئے, واستغفر لهن اللہ, اور اللہ تعالیٰ سے ان کے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے. ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیجئے, ان کی طرف سے استغفار کیجئے. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, اس آیت کی تفسیر چل رہی ہے, تو یعنی اس آیت کی تفسیر تو ایکچولی ایک منٹ ہے, شاید کی تفسیر تو ایکچولی اگلی پیج میں اسٹارٹ ہوگی 416 کے اوپر, ابھی تو اس سے پچھلی والی آیت کی بات چل رہی تھی نا, کہ جب مسلمان یعنی کوئی عورتیں جو ہیں وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں تو آپ ان کا امتحان لے رہے ہیں, اور اگر وہ مسلمان نکلیں امتحان میں پاس ہو جائیں تو پھر آپ ان کو واپس نہ کریں, اور ان کا حق مہر جو ہے وہ ان کے شوہروں کو جو یعنی جو مکہ مکرمہ میں کافر حالت میں ابھی تک موجود ہیں ان کو ان کا حق مہر واپس کر دیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری ڈسکشن تھی کہ جب یہ کوئی عورت مسلمان ہو جائے اور اس کا شوہر مسلمان نہ ہو تو کیا کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں کسی کو کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیں, ورنہ میں آگے چل رہا ہوں. اگر کسی کو وہ ڈسکشن سننی ہے ریپیٹ کرنی ہے تو وہ ریکارڈنگ سن سکتا ہے. اچھا, آگے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو اذا آتیتموہن اجورہن کو بطور شرط کے فرمایا کہ تم ان سے نکاح کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, یعنی ان کو ان کے یعنی اجرت کے عوض میں وہ یعنی تم ان سے نکاح کر سکتے ہو, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بشرط ہے کہ ان کے تم مہر دے دو. یعنی یہ مہر جو ہوتی ہے نا, یہ ایک طرح سے عورت کی جو ہے نا وہ یعنی ایک طرح سے عورت کی قیمت تو نہیں کہہ سکتے اس کو, کہ ایسا نہیں ہے کہ عورت آپ کی باندی بن جاتی ہے, آپ کی غلام بن جاتی ہے جب آپ اس کو مہر کی پیمنٹ کر دیتے ہیں. باندی غلام نہیں بنتی ہے. ٹھیک ہے, بلکہ یہ جو پیمنٹ ہے نا, یہ کس چیز کی پیمنٹ ہوتی ہے؟ یہ صرف پیمنٹ جو ہوتی ہے اس عورت کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق رکھنے کی پیمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس یعنی اس کے لیے آپ کو اجازت مل گئی ہے, پہلے آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ والا معاملہ نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے, تو مہر جو ہے نا وہ گویا بیسیکلی اس یعنی جو یعنی اولاد کے لیے جو سلسلہ ہوتا ہے اس کی پیمنٹ ہوتی ہے صرف. ٹھیک ہے, پوری کی پوری پرسنالٹی کی پیمنٹ نہیں ہوتی ہے کہ بیوی کو آپ نے خرید لیا ہے, جیسا کہ تصور انفارچونیٹلی ایسا ہی اکثر جگہوں پہ لیا جاتا ہے کہ بیوی بس خرید لی گئی ہے, اب وہ ٹھیک ہے ماں باپ کی تو ویسے ہی وہ تو اس کے ماں باپ بن جاتے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے جی کہ ٹھیک ہے جی بیوی کے بھی ماں باپ بن جاتے ہیں, شوہر کے ماں باپ اور بیوی کے ماں باپ ایک دوسرے کے ماں باپ بھی بن جاتے ہیں, ریسپیکٹ کے لیے, خدمت کے جذبے کے لیے یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن ان کی پراپرٹی بن جاتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن یعنی ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی انفارچونیٹلی بہت زیادہ بری ریالٹی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ٹھیک ہے, ایسے گھرانے موجود ہیں کہ جہاں پر کہ جب بیوی کو شوہر بیاہ کر کے اپنے گھر لے کر کے آتا ہے نا, تو اب بیوی کی جتنی ملکیت ہوتی ہے جو کہ شریعت نے اس کی ملکیت اس کا حق اس کے اوپر رکھا ہے, جو وہ مال لے کر کے آتی ہے وہ اس کا مال ہے. ٹھیک ہے, وہ کوئی ہدیہ تو نہیں کیا جا رہا, بیوی کے گھر والوں نے کوئی نہ تو شوہر کو وہ مال ہدیہ کیا ہے, ना शौहर के माँ बाप को वो माल हदिया किया है, वो तो उस उन्होंने अपनी बेटी को देकर के भेजा है, तो वो बेटी की मिल्कियत है। सही है, बात समझ में आ रही है, बेटी की मिल्कियत है। लेकिन जब वो शौहर के घर में आती है ना, तो शौहर के घर में जितने लोग रहते हैं इंक्लूडिंग द शौहर, वो उस माल को अपना माल समझ करके कुछ लोग तो इस्तेमाल करना खाली शुरू कर देते हैं, ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि उस लड़की का माल इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और कुछ जगहों पर तो ये हालत है कि उससे उसकी चीजों को ले लिया जाता है और उसको फिर यानी अपनी पोजेशन में ले लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल उसके जेवरात, राइट, उसके जेवरात उसके पास नहीं छोड़े जाते हैं, वो जेवरात शौहर के माँ बाप अपनी मिल्कियत में ले लेते हैं और फिर उस लड़की को उस वक्त दिया जाता है जब इनका जी चाहता है। जब इनका जी चाहेगा ना कि भाई किसी शादी में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, किसी खानदानी दावत में जाना है, तो अब इनका जी चाह रहा है कि हाँ जी हमारी बहू जो है वो पहने, तो उस वक्त ये देंगे अपनी बहू को जेवर पहनने के लिए, और अगर नहीं है इनका मूड नहीं देंगे, क्योंकि भाई वो तो हमारा हो चुका है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे नहीं कि हमारा हो चुका है, लेकिन प्रैक्टिकली हो चुका है उनका, क्योंकि उस लड़की का इसके ऊपर अब कोई इख्तियार नहीं है, वो लड़की उसको डिमांड नहीं कर सकती, उसको क्लेम नहीं कर सकती, उसकी ओनरशिप में वो है ही नहीं अब, उसकी पोजेशन में वो है ही नहीं अब, ठीक है। तो ये सब जो है ना, ये हमारे मुआशरे में होता है, और सिर्फ दुनियादारों के यहाँ नहीं होता, दीनदारों के यहाँ भी होता है, दीनदारों के यहाँ भी ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो वो सिर्फ दीनदार बन जाना या तबलीगी जमात में निकल जाना या किसी शेख के साथ बैत भी कर लेना, ठीक है ना, लोग समझते हैं जी तबलीगी जमात की बुराई कर रहे हैं और शेख साहब के यहाँ तो सब कुछ ठीक हो जाता है, नहीं, शेख साहब के यहाँ बैत कर लेने सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, ठीक है भाई। दीन आप सीखेंगे जब तक नहीं और फिर उसके ऊपर अमल का जज्बा नहीं होगा, तो खाली बैत के अल्फाज पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, समझ रहे हैं बात, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से तबलीगी जमात में आप जो निकल रहे हैं, पैदल की जमात निकल रही है, हवाई जहाज की जमात निकल रही है, तो आप घूम फिर करके सारी दुनिया से वापस आ जाएं, लेकिन अगर आपकी नीयत जो है वो शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की नहीं है, तो आप पूरी दुनिया घूम करके वापस आ जाए तबलीगी जमात के साथ, आपके ऊपर कुछ नहीं होने वाला है, कोई आपका बाल भी बिका नहीं होने वाला है, ठीक है। तो तबलीगी जमात बेशक हमारे अकाबरीन का शुरू किया हुआ का सिलसिला है और उसमें बहुत फायदे हैं, बहुत इसलाह हो जाती है, लेकिन किसकी इसलाह होती है, जो इसलाह की नीयत से जाता है, ठीक है, ये नीयत के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, इन्नमल आमालु बिन्नियात, सही है। तो तबलीगी जमात का लेबल लगा लेने से या मदरसे का लेबल लगा लेने से या शेख साहब की बैत का लेबल लगा लेने से इसलाह नहीं हो जाती, ठीक है ना। तो ये तो भाई असबाब है इसलाह करने के, जिसकी नीयत होगी उन असबाब की मदद से उसकी इसलाह हो जाएगी, लेकिन जिसकी नीयत ही नहीं होगी, जिसके अंदर ही फतूर होगा, नहीं उसने बदलना अपने आप को, ठीक है, या उसने बड़ों की बात नहीं मान करके चलना, तो उसकी उसके साथ कुछ नहीं होने वाला। इस वजह से हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जो कि तबलीगी जमात का लेबल लगा हुआ है उनके ऊपर, या जिनके ऊपर जो है वो शेख साहब की बैत का लेबल लगा हुआ है, लेकिन उनके घरों में यही सारी चीजें हो रही होती हैं, ठीक है। बहरहाल तो फरमाया कि बशर्ते कि उनको मेहर दे दो, ये दर हकीकत निकाह की शर्त नहीं है, क्योंकि ब इत्तिफाक उम्मत निकाह का इनकाद अदाई मेहर पर मौकूफ और मशरूत नहीं है कि मेहर अदा करोगे तब निकाह होगा, नहीं, निकाह की किस चीज के ऊपर मौकूफ है, राइट, अगर आपसे पूछें आपकी भी थोड़ी सी होनी चाहिए, निकाह की शर्त क्या है, ये आप में से कोई बताए, और बालिग होना, नहीं बालिग होना कोई निकाह की शर्त नहीं, आप तो थे उस क्लास में जिसे मैंने बात बताई थी, निकाह की शर्त क्या है, मेहर नहीं है ना, यहाँ सामने पढ़ तो रहे हैं कि निकाह की शर्त नहीं है, माशाल्लाह निकाह भी हो गया, औलादे भी हो गई और निकाह की शर्त नहीं, हाँ एक्सेप्टेंस फ्रॉम बोथ, ठीक है, दोनों तरफ से एक्सेप्टेंस, जिसको ईजाब और कबूल कहते हैं, ठीक है, यानी पूछा जाता है क्या आपको कबूल है फलानी साहब के फलानी बेटी जो है वो आपको यानी निकाह में पेश कर रहे हैं वो अपनी बेटी को, ठीक है, तो वो क्या आप उनको कबूल करते हैं अपनी निकाह में? तो लड़का जवाब देता है कबिल तू, हाँ मैंने कबूल किया, यस आई एक्सेप्टेड, और ये माजी के सीगे में जवाब देना होता है, ठीक है ना, मैं एक्सेप्ट करता हूँ नहीं जवाब देना होता, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, ये भी बड़ी जबरदस्त चीज है। तो इजाब कबूल है, ठीक है, और उसी तरह से लड़की ने भी इसी तरह से कबूल है करना होता है, ठीक है। अलबत्ता ये है कि लड़की जो है वो सबके सामने बैठ करके जो 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 बागैरत लोग होते हैं वो लड़की को सबके सामने नहीं बिठाते, और जो बेगैरत लोग होते हैं वो लड़की को भी सबके सामने बिठाते हैं, ठीक है, तो वो तो उनका हिसाब अल्लाह ताला लेगा फिर। बहरहाल तो ये सारी चीजें हैं जो गुनाह कबीरा हम लोग कर रहे होते हैं हर किस्म के, और फिर जो है वो कहते हैं हिंदू ना माने हमें, है भाई, अच्छा है अल्लाह ताला से पहले हिंदुओं से पिट करके अगर तौबा कर लें ना तो ज्यादा बेहतर है, अल्लाह ताला की मार जो होती है वो ज्यादा शदीद होती है, ठीक है। तो बस ये हरकतें हैं, बहुत ज्यादा बहुत जुल्म है हमारे यहाँ, बहुत जुल्म है, बहुत ज्यादा जुल्म होता है हमारे घरों के अंदर, ठीक है, हिंदू की अखा के जुल्म करेंगे जितना जुल्म हम अपने आप पर खुद करते हैं। अक्सर लोग आज कल मस्जिद में निकाह नहीं करते, मस्जिद में निकाह करना कोई शर्त नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मस्जिद में निकाह करने की ऑप्शन हो और बंदा ना करे तो अब ये किसी और चीज की अलामत होती है कि इसको तौफीक नहीं है मस्जिद जाने की, ये अलामत हो सकती है किसी किसी और बुराई की, लेकिन मस्जिद में निकाह करना बेशक सुन्नत है लेकिन ये शर्त नहीं है, निकाह तो कहीं भी हो जाता है। आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, पिछले दफा बताया भी था कि आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, एक लड़का एक लड़की, और वो लड़का कहे कि भाई आप को मैं अपने निकाह में लेता हूँ, लड़की कहती है कबूल है, ठीक है ना, और सामने दो लोग बैठे हुए थे जो इनको जानते भी नहीं थे, उन्होंने सुन लिया इन दोनों की इन दोनों की आपस की कॉन्वर्सेशन, निकाह हो गया, सही, निकाह तो ऐसे हो जाता है। तो लेकिन ऐसे करना नहीं चाहिए ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि निकाह में जो मकसद है वो मकसद इस तरीके से पूरा नहीं होता, लेकिन निकाह तो हो जाता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि निकाह को अल्लाह ताला ने इतना आसान किया है, इतना आसान काम, और आपने सुना ही होगा कि जहां निकाह आसान होता है वहां जिना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जहां पे निकाह मुश्किल होता है वहां जिना आसान हो जाता है। तो इस वजह से हमारे मुआशरे में निकाह को जितना मुश्किल बनाया जा रहा है उसी वजह से जिन्ना जो है वो बहुत ज्यादा आसान होता चला जा रहा है, ये सजा होती है, ठीक है, अल्लाह ताला ने जिस चीज को आसान बनाया हम उसको मुश्किल बनाएंगे ना तो सजा से तो नहीं बच सकेंगे फिर, ठीक है, तो फिर अल्लाह ताला जो है वो इस तरीके से सजा देते हैं कि यानी गुनाह के अंदर ना फिर मुआशरे को धक्का धक्के पड़ रहे होते हैं फिर। हाँ, बट इट्स टू डिफिकल्ट इन आवर टाइम्स, नो इट्स नॉट टू डिफिकल्ट डिफिकल्ट इन आवर टाइम्स, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, फर्क सिर्फ ये है कि आप किन लोगों के साथ अपनी निस्बत को मजबूत करके रखते हैं। अगर आपकी निस्बत जो है वो दुनियादार लोगों के साथ मजबूत है तो दीन पे चलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और अगर आपकी निस्बत दीनदार लोगों के साथ मजबूत है तो कोई मुश्किल नहीं होगा। तो ये हमारी चॉइस होती है, हम खुद से अपनी डिसीजन लेते हैं कि हम किन के साथ अपनी निस्बत मजबूत करना चाहते हैं, तो कर लें फिर अपनी चॉइस, तो अल्लाह ताला उसके हिसाब से आपके साथ मामला कर देंगे। दुनिया वालों के साथ निस्बत मजबूत करेंगे तो दुनिया दुनिया पे चलना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। बहरहाल बात हो रही थी कि बशर्ते कि उनके मेहर दे दो, तो ये दर हकीकत निकाह की शर्त नहीं है, क्योंकि बा इत्तेफाक उम्मत निकाह का इनेकाद अदाइये मेहर पर मौकूफ और मशरूत नहीं है, अलबत्ता निकाह पर मेहर की अदायगी वाजिब व लाजिम जरूर है, ठीक है, तो वाजिब लाजिम जरूर है कि यहाँ उसको बतौर शर्त के शायद इसलिए जिक्र किया गया है कि अभी एक मेहर तो उसके काफिर शौहर को वापस कराया जा चुका है, यानी निकाह पर मेहर की अदायगी का मतलब क्या होता है, जिसको कहते हैं ना मुअज्जल या मुअज्जल, ठीक है, उस वक्त आप अदा कर दें या आप बाद में अदा कर दें, तो मेहर जो है वो फौरन अदा करना जरूरी नहीं होता, लेकिन वाजिब और लाजिम होता है, लेकिन शर्त कोई और चीज होती है, ठीक है, शर्त किस चीज को कहते हैं, फर्क पता है शर्त में और वाजिब में, या जैसे यहाँ पे वाजिब का लफ्ज इस्तेमाल किया तो इस वजह से मैं वाजिब कह रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर क्वेश्चन ये होगा कि शर्त में और रुकन में क्या फर्क है, किसी चीज की शर्त और किसी चीज का रुकन, इन दोनों में फर्क क्या है, किसी को याद है या पता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शर्त एंड रुकन के लिए क्या वर्ड होगा, हाँ रुकन, शर्त मीन्स कंडीशन, रुकन इंटीग्रल नहीं, ठीक है ये तो आपने ट्रांसलेशंस कर दिए हैं, शर्त के ट्रांसलेशन कंडीशन से हो गई, रुकन की ट्रांसलेशन तो हर इंटीग्रल से नहीं होती, लेकिन रुकन का मतलब होगा पार्ट। तो शर्त और रुकन में फर्क ये होता है कि शर्त जो है ना वो काम शुरू करने से पहले आपको मीट करनी पड़ती है, ठीक है, काम शुरू करने से पहले आपको मीट करनी पड़ती है उसको शर्त कहते हैं, और काम करने के दौरान आपको क्या क्या करना है उसको रुकन कहते हैं, ठीक है। इसकी मिसाल नमाज, नमाज की शर्त क्या है, वुजू, ठीक है, एक आम शर्त, बहुत सारी शर्तें हैं नमाज की लेकिन एक आम शर्त क्या है, वुजू, तो वुजू आप नमाज के दौरान करते हैं, अगर आप वुजू दौरान दौरान नमाज करेंगे तो वुजू नमाज का रुकन कहलाएगा, ठीक है, लेकिन वुजू पहले करना होता है ना, वुजू नहीं किया तो नमाज आप शुरू ही नहीं कर सकते, लेकिन वुजू कर लिया तो अब आप नमाज शुरू कर सकते हैं, जब आपने शुरू कर ली तो अब इसके रुकन क्या है, कयाम, रुकू, सुजूद, आदा, राइट, ये सब रुकन है नमाज के, तो रुकन नमाज के अंदर होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर भी मेहर की अदायगी जो है वो रुकन है, क्योंकि आपने मेहर एक कोई ना कोई तय करना है और वो कभी ना कभी आपने देना है, ठीक है, तो ये रुकन कहलाएगा, लेकिन शर्त नहीं है ये, ठीक है, कि पहले से आपने ये नहीं करना। लेकिन इस आयत के अंदर जो है ना, इज़ा आयतैतुमुहुन्ना उजूरहुन्ना, तो इसके अंदर बतौर शर्त के फरमाया है, ठीक है, तो वो क्यों फरमाया इस तरीके से, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ उसको बतौर शर्त के शायद इसलिए जिक्र किया गया है कि अभी एक मेहर तो उसके काफिर शोहर को वापस कराया जा चुका है, ठीक है, जो पिछली डिस्कशन थी ना कि अगर वो मुसलमान औरत भाग करके आ जाए, यानी मदीना मुनव्वरा आ जाए या मुसलमानों के लश्कर में आ जाए, तो उसका काफिर शोहर नेचुरली उसके पीछे पीछे भागा हुआ आएगा कि मेरी बीवी मुझे वापस करो, तो उसको बीवी तो वापस नहीं करी जाएगी, लेकिन जो उसने मेहर बीवी को अदा कर दिया था ना, तो वो मेहर वापस किया जाएगा, और वो मेहर कौन वापस करेगा, किसी को याद है मेहर कौन वापस करेगा उस बीवी के शोहर को, उस भागी हुई औरत के शोहर को मेहर कौन वापस करेगा, अवाम, यानी वो औरत खुद नहीं वापस करेगी बल्कि यानी जो मुसलमान जो वहां पर यानी हाँ अवामुन्नास वही वापस करेंगे, ठीक है, तो यानी ये पूरी सोसाइटी के ऊपर ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने डाली है, ठीक है। तो अब जब वो मेहर वापस कर दिया गया ना उस शौहर को, तो ऐसा ना हो कि अब उससे निकाह करने वाले मुसलमान, यानी अब जो किसी मुसलमान ने कहा कि चलो भी मैं इससे निकाह कर लेता हूँ, ठीक है, तो अब वो ये समझ बैठे कि मेहर तो उसका दिया जा चुका, यानी हम लोगों ने मिलजुल करके ना कलेक्टिवली मेहर तो उसका अभी अदा कर दिया है, गोया के ऐसा समझने लगे हैं कि उसके जो प्रीवियस शोहर को जो मेहर दिया है ना, यही गोया के हमने उसके बिहाफ पर दिया है, तो ऐसा ही है कि जैसे हमने इस औरत को मेहर अदा कर दिया है, तो अब जदीद मेहर की जरूरत नहीं है, इसलिए फरमा दिया कि इस मेहर का ताल्लुक, यानी उस मेहर का ताल्लुक पिछले निकाह से था, अब दूसरा निकाह होगा तो उसका जदीद मेहर लाजिम है, ठीक है, जदीद मेहर लाजिम है। देखें इसके अंदर कितनी यानी इन औरतों के हुकूक का तहफ्फुज, ठीक है, क्या इस आयत के अंदर नहीं है कि किसी में किसी के जहन में कोई गलत फहमी ना आ जाए, ठीक है, रहते दुनिया तक जब तक ये कुरान रहेगा, अल्लाह ताला मेड श्योर कि ये इस बात को स्पेल आउट करके कुरान के अंदर, वरना कुरान के अंदर कितनी चीजें हैं जो कि स्पेल्ड आउट नहीं है, लेकिन इस बात को औरतों के हुकूक की जो बात थी कि भाई उनका मेहर जो है वो कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग के भाई ऐसा ना हो कि भाई बाद में जो है वो इज्तिहादी मसला ये बन जाए, और कुछ उलमा के नजदीक जो है वो ऐसा हो जाए कि भाई नहीं मेहर तो हो चुका है, और कुछ उलमा कहे नहीं मेहर देना है, ठीक है, तो फिर वो इज्तिहादी मसला बन जाता है, तो किसी औरत को मिलेगा किसी औरत को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इज्तिहादी मसला, तो फिर उसमें इज्तिहाद में तो इख्तलाफ होता है हमेशा, इल्मी इख्तलाफ, ठीक है, जायज होता है वो, लेकिन उसके नुकसान किसको होगा, औरतों को नुकसान होगा, ठीक है, तो इसको इज्तिहाद पर नहीं छोड़ा, इस मसले को उम्मत के इज्तिहाद पर नहीं छोड़ा, बल्कि इस मसले को स्पेल आउट कर दिया अपने कुरान में कि नहीं इसको जदीद मेहर तुमने देना है। इजा आतई तुमुहुन्ना उजूरहुन्ना, ठीक है। वला तुम सिकू बेसामिल कवाफिर, इसी आयत का अगला हिस्सा क्या था कि तो इसको तो कहें रोकना ना तुम सिकू, और नहीं अपने कब्जे में रोको बेसामिल कवाफिर काफिर औरतों के नामूस को, ठीक है। तो इसकी तफसील क्या लिखते हैं कि इसम जो है वो इस्मत की जमा है जिसके असली मानी हिफाजत और इस्तेहकाम के हैं, ठीक है। जिसको हम इज्जत भी कहते हैं, उर्दू में हम इस्मत का लफ्ज जो है वो इज्जत के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस्मत क्या कहते हैं, इस्मत हुरमत की हिफाजत, औरतों की इस्मत की हिफाजत, इस तरह बात करते हैं ना। तो असल में मतलब इसका है हिफाजत और इस्तेहकाम। मुराद इससे वो अकद निकाह वगैरह हैं जिनकी हिफाजत की जाती है, और कवाफिर ये जमा है काफिरा की, और मुराद इससे मुश्तरिका औरत है क्योंकि काफिरा किताबिया से निकाह की इजाजत कुरान करीम में मंसूस है, ठीक है। यानी काफिर तो मुशरिक भी काफिर होते हैं, ईसाई भी काफिर होते हैं, यहूदी भी काफिर होते हैं, लेकिन ईसाई यहूदी जो है इनको किताबिया कहते हैं, यानी किताबी काफिर, अहले किताब काफिर, ठीक है। तो जो अहले किताब काफिर औरतें होती हैं तो उनसे निकाह की इजाजत कुरान ने दी है, तो कुरान के अंदर मंसूस है। मंसूस का मतलब कुरान की नस में ये बात शामिल है। मुराद आयत की ये है कि अब तक जो मुसलमानों और मुशरिकों के दरमियान मुनाकहत की इजाजत थी वो खत्म कर दी गई है। अब किसी मुसलमान का निकाह मुशरिक औरत से जायज नहीं है, और जो निकाह पहले हो चुके हैं वो भी खत्म हो चुके हैं। अब किसी मुशरिक औरत को अपने निकाह में रोकना हलाल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर काफिरा का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, मुशरिका को बताने के लिए, ठीक है, कि यहाँ पर अहले किताब औरत की बात नहीं हो रही है बल्कि मुशरिका औरत की बात हो रही है कि अगर कोई मुशरिका औरत तुम्हारे निकाह में थी ना तो उसको तुम अब अपने निकाह में नहीं रोक सकते हो, ठीक है। वला तुम सिकू, मत रोको मुशरिका औरतों को अपने निकाह में, ठीक है। अमसक युमसिको इमसाकन का मतलब होता है पकड़ के रखना, रोकना, ठीक है। तो ला तुम सिको, नहीं रोको। जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई तो जिन सहाबा कराम के निकाह में कोई मुशरिक औरत थी उसको छोड़ दिया। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में दो मुशरिक औरतें उस वक्त तक थीं जो बवक्त हिजरत मक्का मुकर्रमा में रह गई थीं। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये आयत नाजिल होने के बाद दोनों को तलाक दे दी, यानी उनको मैसेज भिजवा दिया कि भाई अब खत्म, ठीक है। तो देखें ये जो मुआशरा था ना, ये इसमें अहकामात आ रहे थे, ठीक है। तो अहकामात से पहले जो है ना वो बहुत सारे लोग जो हैं वो उन चीजों के ऊपर अमल करते थे जो कि बाद में हराम हो गए थे, ठीक है। बिकॉज पहले तो उन लोगों को पता ही नहीं था ना कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं था कि मुसलमान हुए और ऑटोमेटिकली सबने जो है वो काफिर औरतों से अलहदगी इख्तियार कर ली, ठीक है। भाई वो बीवी है और कोई ऐसा हुक्म भी नहीं है तो अब उसकी जिम्मेदारी उठाई भी है ना, तो बेशक वो काफिरा है लेकिन चूंकि उसकी जिम्मेदारी मैंने उठाई है तो उसकी जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही उसको उठा करके नहीं छोड़ दूंगा, बल्कि जब तक मतलब फ्यूचर का किसको पता, इन साहबा को फ्यूचर को तो नहीं पता होता था कि आगे हुक्म आने वाला है इनको छोड़ने का, लेकिन जब हुक्म आ जाता था तो उसके ऊपर बहस मुबाहिसा या रहम दिली, राइट, कि नहीं नहीं अभी भी मैं उठाऊंगा, ये जो हुक्म आ गया है तो चलो छोड़ो ना, ये हुक्म जो है वो कोई और इसके ऊपर अमल कर लेगा, नहीं, हुक्म पे तो अमल करना है, ठीक है। तो ये हुक्म के गुलाम होते थे, फारूक आजम ताना ने दोनों को छोड़ दिया। अच्छा, और तलाक से मुराद इस जगह छोड़ देना और कता ताल्लुक कर लेना है, इस्तिलाही तलाक की यहाँ जरूरत ही नहीं क्योंकि इस आयत के जरिए से निकाह टूट चुका है, ठीक है। अल्लाह ताला का हुक्म आ गया, और पिछली क्लास में भी हम बात कर चुके थे ना कि अल्लाह ताला का हुक्म आ जाता है ना तो फिर उसके बाद आपको प्रोसेस की भी जरूरत नहीं रहती, ठीक है। तो जैसे कि निकाह का एक प्रोसेस होता है, लेकिन जब अल्लाह ताला का हुक्म आ गया कि ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन का निकाह अल्लाह ताला ने कर दिया, तो अब वो गवाह महर ये सारी चीजें जो है वो एब्रोगेट हो गई उस पर्टिकुलर केस के अंदर, ठीक है। तो अल्लाह का हुक्म जो है ना ये प्रोसेस को ओवर राइड कर देता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अल्लाह का हुक्म उसने ओवरराइड कर दिया। अब तलाक लिख करके भेजने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। बहरहाल फारूक आजम ने दोनों को छोड़ दिया। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप, लेकिन क्या आज के दौर में दुरुस्त है अहले किताब औरत से निकाह करना? देखिए, दुरुस्त का जो 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 लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है ना, तो इस औरत को, सॉरी, इस लफ्ज को जो है वो आप वापस ले लें, ठीक है। अब आप वापस ले नहीं सकते, मुंह से जो बात निकलती है वो तो फिर निकल जाती है ना। तो भाई, जब कुरान के अंदर एक चीज का हुक्म दे दिया है, तो उसके लिए आप गैर दुरुस्त का लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, वरना तो फिर कलमा दोबारा पढ़ लीजिए। तो यानी आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो दुरुस्त नहीं है, ठीक है। आप कहना जो चाह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, आपका मकसद क्या है कहने का, ठीक है। उसके लिए आप अंग्रेजी का लफ्ज जो है वो होगा एडवाइजेबल, इज इट एडवाइजेबल और नॉट, ठीक है। या ये कि उर्दू में क्या कहेंगे कि क्या इस बात की तरगीब दी जाएगी, या क्या ये बात मरहूब है कि किसी अहले किताब औरत से शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मरहूब है कि नहीं, ठीक है। तो इसका जवाब ये दिया जाएगा कि नो, इट्स नॉट एडवाइजेबल, ठीक है। मिसाल के तौर पर जब आपको क्या कहते हैं, शुगर की बीमारी हो जाती है, ठीक है ना, तो क्या आपको एडवाइजेबल होता है कि आप चीनी वाली चाय पिए? है तो चीनी हराम तो नहीं है, ठीक है। और चीनी वाले जो फ्रूट्स होते हैं, मतलब जिनके अंदर फ्रक्टोज ज्यादा होता है खजूर खाना, तो भाई खजूर तो माशाल्लाह सहाबा कराम खाते थे, ठीक है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खाते थे, तो क्या शुगर के मरीज को भी खजूर खाना चाहिए, क्योंकि वो जायज है और सहाबा कराम की सुन्नत है, नहीं खाना चाहिए ना, क्योंकि एडवाइजेबल नहीं है उनके लिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कहा जाएगा कि नो, इट्स नॉट एडवाइजेबल कि वो बंदा खजूर खाए, हालांकि वो जायज है, उसको नाजायज या गैर दुरुस्त तो नहीं कह सकते, ठीक है। तो इस वजह से हमारे, बल्कि ये जो किताबिया औरत से शादी करने वाला मामला है ना, तो इसको तो फिर बिल्कुल इब्तिदाही से अनएडवाइजेबल करार दिया गया। तो इस वजह से ये कहा जाएगा कि जो अल्लाह ताला ने जायज रखा है ना, तो जायज रखने की फिर कुछ यानी हिकमत होती है कि भाई अगर ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि किसी किताबी औरत से शादी करने में किसी यानी उम्मत का फायदा हो रहा है, या कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही है, करनी ही है, ठीक है। अगर नहीं करेगा तो हराम का मुर्तकिब हो जाएगा, उसके साथ जिना का मुर्तकिब हो जाएगा, ठीक है, और उससे बचना उसके लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऐसी सूरत में निकाह कर लेगा, जायज है निकाह करना, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। लेकिन क्या करना चाहिए? हरगिज नहीं, ठीक है। और तारीखी किताबें उठा के देखें तो सल्तनत उस्मानिया कितनी बड़ी सल्तनत थी, राइट, यानी सुपर पावर। आज की सुपर पावर्स तो खैर, वो आज तो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स और बात है, लेकिन उस जमाने में सल्तनत उस्मानिया की जो जो शान और शौकत थी, राइट, क्या क्या चीज थी वो सल्तनत। 800 साल जो है वो इन्होंने इस तरह की हुकूमत करी है, और उसके जवाल के मेजर कॉजेज जो थे ना, उनमें से एक ये था कि उन खलीफों ने जो है ना, फिर वो यानी काफिर औरतों से शादी करनी शुरू कर दी थी, ठीक है। और उन औरतों ने जो महल में दाखिल हुई, और उसके बाद जो उन्होंने फिर यानी अपने साजिशें करी हैं और हरकतें करी हैं, तो फिर इनकी नस्लें जो हैं वो तबाह हो गई। फिर कॉकेशियन वुमेन जी, प्रिसाइसली इंडिविजुअल केस, हाँ इंडिविजुअल केस कहलाए गए। अच्छा, और क्या लिखा था, प्राइवेटली लिखते हैं तो क्या, ऐसी बहुत सारी बातें हमें पता चलेंगी तो हम भी छोड़ देंगे इंशाल्लाह। अच्छा सॉरी, वो कौन सी वाली बात की छोड़ने का आपने लिखा था, मैं उस वक्त देखा नहीं आपका मैसेज, तो जो बात हो रही थी वो मुझे अब याद नहीं है। अच्छा ठीक है, आगे फरमाते हैं कि वस अलू मा अनफक्तुम वल यस अलू मा अनफकु, ठीक है। यानी जब मामला ये ठहरा कि जो औरत मुसलमान होकर हिजरत करके मदीना तैयबा आ जाए, तो वो वापस मक्का मुकरमा ना भेजी जाएगी, अलबत्ता उसके शौहर ने जो मेहर वगैरह उसको दिया है वो उसके शौहर को वापस दिया जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया ना क्लियर इंशाल्लाह। इसी तरह अगर कोई मुसलमान औरत खुदा ना खास्ता मुर्तद होकर या मुर्तिद होकर मक्का मुअज्जमा चली जाए, मुर्तद भी पढ़ सकते हैं, मुर्तिद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, यानी एक्टिव टेंस में भी पढ़ सकते हैं और पैसिव टेंस में भी पढ़ सकते हैं। बहरहाल उसकी अलग रीजन है। तो खुदा न खास्ता अगर मुर्तद होकर मक्का मुअज्जमा चली जाए या पहले ही से काफिर हो मगर मुसलमान शौहर के कब्जे से निकल जाए, तो यानी मुसलमान शौहर को फिर वो अब इस आयत के बाद जो है वो कब्जे से निकल गई। खुलासे तफसीर में इसी सूरत को शायद इसलिए अख्तियार किया गया है कि ऐसा कोई वाकया पेश ही नहीं आया कि कोई मुसलमान औरत मुर्तद होकर मक्का मुकरमा चली गई हो और फिर वहीं काफिर होकर रह गई हो। हाँ, ऐसे वाकयात पेश आए कि जो पहले ही से काफिर थीं वो अपने मुसलमान शौहर के कब्जे से निकलकर मक्का मुकरमा ही में रहीं। ठीक है, जैसे उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की जो दो बीवियां थीं मुशरिका थीं तो वो आई नहीं हिजरत करके, वहीं पर रहीं तो उनके कब्जे से वो निकल गईं। ठीक है, तो खुलासे तफसीर में ये बात इसलिए लिखी थी कि कोई औरत चूंकि मुर्तद हो ही नहीं थी। तो आगे अगरचे के थोड़ी सी इसकी एक एक्सेप्शन लिखी हुई है अगले पेज के ऊपर, वो हम वक्त आने पर पढ़ेंगे। तो कुफारे मक्का उसको वापस नहीं करेंगे। ठीक है भाई, वो काफिरा है, वो उन्हीं के साथ रहे, यानी बला से वो उन्हीं के साथ रहे, तो वो वापस नहीं करेंगे, हमें चाहिए भी नहीं है। ठीक है, मगर उसके मुसलमान शौहर ने जो मेहर वगैरह उसको दिया है उसकी वापसी कुफारे मक्का के जिम्मे होगी। ठीक है भाई, जिस तरह से ये मेहर वापस कर रहे हैं उसी तरीके से वो भी मेहर वापस करें, इसलिए इन मामलात का तस्फिया बाहमी हिसाब फहमी से कर लिया जाए। तरफेन से जो कुछ मेहर वगैरह में खर्च किया गया है वो दरियाफ्त करके उसके मुताबिक लेन देन कर लिया जाए। ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वस अलू मा अनफक्तुम, कि तुम मांग लो उनसे जो तुमने उन पर खर्च किया है। अनफक युनफिको इनफाकन का मतलब होता है खर्च करना। ठीक है, तो अनफक तुमने उन पर खर्च किया है, वो उनसे मांग लो। ठीक है, ले लो यानी वा खुदू हो। ठीक है, ले लो, ले लो के अंदर क्या है कि जंग करनी पड़ेगी, लड़ना बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ताकि उनसे फिर छीनो ये वाला माल जो उन औरतों को दिया था, और वो तो इस वक्त हो नहीं रही थी जंग। ठीक है, तो उसका हुक्म नहीं किया कि जंग करो उनसे और फिर अपना माल उनसे वापस लो जो तुमने उनको मेहर में दिया था उन औरतों को, नहीं, बल्कि वस अलू, तुम उनसे मांगो। अब जब मांगोगे तो फिर जाहिर है वो दे भी सकते हैं और वो मना भी कर सकते हैं। ठीक है, वल यस अलू मा अनफकू, और वो मांग लें मा अनफकू जो उन्होंने खर्च किया है। ठीक है, तो अब चूंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म कुरान के अंदर है और कुरान को कौन मानता है, सिर्फ मुसलमान मानते हैं, काफिर तो नहीं मानते। ठीक है, तो ये जो हुक्म आया ना, तो इसका नतीजा क्या हुआ कि मुसलमानों ने तो वापस कर दिया लेकिन उन्होंने तो वापस नहीं किया। ठीक है, अगरचे मुसलमानों ने अगर उनसे मांगा भी तो उन्होंने वापस नहीं किया, तो उसी का फिर आप करें क्या। तो ये फरमाया कि भाई अब जो है ना तुम यानी बाहमी हिसाब फहमी से हिसाब किताब तुम अपने जहन में कर लो कि उन्होंने कितना अदा किया था, तो यानी तुमने उनको कितना अदा किया था, अब जो उन्होंने तुम्हें अदा करना था ना तो उसको उसमें से डिडक्ट कर लो। ठीक है, तो अब उनको तुम डिडक्ट करके अदा करो। ठीक है, बिकॉज ये जो अकाउंट पेबल्स और अकाउंट रिसीवेबल्स थे ना, ठीक है, कि भाई मदीना के मुसलमानों को पे करना था मक्का मुकरमा के काफिरों को और मक्का मुकरमा के काफिरों से रिसीव करना था। ठीक है, तो अब इसको तुम यानी डिडक्शन के फॉर्मूले से इसको डिडक्ट कर लो, जो उन्होंने तुम्हें नहीं दिया उसको पेमेंट में से डिडक्ट कर लो। ठीक है, तो इसके भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इजाजत दी। सही है, क्योंकि पूरे बाशरे के लेवल पे बात हो रही है ना, ये किसी एक इंडिविजुअल के लेवल पे तो बात नहीं हो रही। तो फरमाया कि इसके मुसलमान शौहर ने जो मेहर वगैरह उसको दिया है उसकी वापसी कुफारे मक्का के जिम्मे होगी, तो ये मुसलमानों के लिए अकाउंट रिसीवेबल्स बन गए। इसलिए इन मामलात का तस्फिया बाहिमी हिसाब फहमी से यानी बाहिमी यानी आपस की अकाउंटिंग से कर लिया जाए। तरफेन से जो कुछ मेहर वगैरह में खर्च किया गया है यानी दोनों तरफों से जो खर्च किया गया है वो दरियाफ्त करके उसके मुताबिक लेन देन कर लिया जाए। इस हुक्म पर मुसलमानों ने तो बेतीब खातिर अमल किया क्योंकि अहकाम कुरान की पाबंदी उनके नज़दीक फर्ज है, मुसलमानों के नज़दीक। इसलिए जितनी औरतें हिजरत करके आईं सबके मेहर वगैरह उनके काफिर शोहरों को वापस भेज दिए, मगर कुफारे मक्का का कुरान पर ईमान तो नहीं था तो उन्होंने अमल नहीं किया। इस पर अगली आयत नाजिल हुई। ठीक है, कि फसअलू मा अनफक्तुम, अच्छा वह इस पर बोलते अगली आयत क्या है, वह इन फातकुम शैउम मिन अज़वाजुकुम इलल कुफारी फआक़बतुम, ठीक है कि तुम्हारी अजवाज से तुम्हें जो जो पैसे मिलने थे ना वो अगर फौत हो जाए यानी वो हड़प कर लें और तुम्हें ना वापस करें, ठीक है तो क्या करो, फआक़बतुम। तो आकबतुम का क्या मतलब होता है, फरमा रहे हैं कि आकबतुम मुआकबा से मुश्तक है जिसके एक मानी होते हैं इंतकाम और बदला लेने के। यहाँ ये मानी भी मुराद हो सकते हैं कि इंतकाम और बदला ले लो उनसे। इस सूरत में मतलब आयत का ये होगा कि मुसलमानों की कुछ औरतें अगर कुफार के कब्जे में आ जाएं, यानी मुसलमानों की काफिर औरतें अगर कुफार के कब्जे में आ जाएं, तो शर्त शर्त सुलह के मातहत औरों पर लाजिम था कि उनके मुसलमान शोहरों को उनका दिया हुआ मेहर वगैरह वापस करें, जैसे कि मुसलमानों की तरफ से मुहाजरात के काफिर शोहरों को उनका मेहर वापस किया गया। लेकिन जब कुफार ने ऐसा नहीं किया और मुसलमान औरतों के मेहर उनको अदा नहीं किए, तो उनके इस अमल का अगर तुम इंतकाम और बदला ले लो, इस तरह के कुफार मक्का को जो रकम मुहाजरात के यानी जो हिजरत करने वाली औरतें थीं उनके मेहर की अदा करनी थी, तुम भी वो अपने हक के मुताबिक रोक लो, ठीक है यानी उनको ना पेमेंट करो। तो इसका हुक्म ये है कि फ़ातुल्लदीना ज़हबत अज़वाजुहुम मिथला मा अनफ़कू, यानी तुम इस रकम में से जो मुहाजरात के मेहर की रोक ली गई है यानी मक्का मुकरमा वालों ने पे नहीं करी तुम्हें, तो इन मुसलमान शोहरों के खर्च किए हुए मेहर वगैरह अदा कर दो जिनकी औरतें कुफार मक्का के कब्जे में आ गई, ठीक है। तो वही जो अकाउंट रिसीवेबल्स और पेबल्स के जरिए से आपको बात बताई तो वही उन्होंने यहाँ पे लिखी है। अच्छा क्या लिख रहे हैं, उस्मान जो कि यंगेस्ट साहबजादे थे, उस्मान जो कि यंगेस्ट साहबजादे थे इर्तुगाल इर्तुरुल गाजी के, उनकी दूसरी बीवी बाला खातून थी जो कि हजरत इदाबाली तुर्किश सूफी शेख उनके साथ मिलकर और हजरत इदाबाली की रहनुमाई में उन्होंने बुनियाद रखी ऑटोमन एम्पायर की। अच्छा तो ऑटोमन एम्पायर की तारीख तो खैर पढ़ना मकसूद नहीं था यहाँ पे, आपने क्यों लिखा है बस समझ, पढ़ना भी मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा है। मुर्तद औरत अगर मुसलमान हो जाए तो कोई मुसलमान उससे निकाह कर सकता है, हाँ मुर्तद औरत अगर मुसलमान हो जाए, अगर मुर्तद हुई भी तो वो तौबा करके मुसलमान हो गई तो क्यों नहीं उससे निकाह किया जा सकता। After disintegrating from the Seljuks, which were the vessel of Mongol. अच्छा तो आपने माशाल्लाह हिस्ट्री पढ़ी भी, इनकी अच्छी बात है पढ़नी चाहिए। अच्छा खैर आपका मैसेज में सही तरह पढ़ नहीं सका, ठीक है तो यहाँ तक क्लियर है जी। बहरहाल कोई सवाल अगर हो उसके बारे में तो पूछ लीजिएगा। अच्छा दूसरे मानी आकब तुम या अकब तुम या अकब तुम, तो उनके जंग में माले गनीमत हासिल करने के भी हैं, यानी आकबतुम के दूसरे मानी जो है ना वो जंग में माले गनीमत हासिल करने के भी हैं। और इस आयत में लफ्ज आकबतुम की ये तीनों किराअतें भी मुख्तलिफ कुर्रा से मनकूल हैं। क्या मतलब कि कुरान करीम जो है वो एक से ज्यादा किराअतों में यानी एक से ज्यादा डायलेक्ट्स में नाजिल हुआ है, ठीक है तो कुछ अल्फाज जो है ना वो उनको मल्टीपल तरीकों से पढ़ा जाता है अरबों के दरमियान, ठीक है किसी एक डायलेक्ट में जो है उसको आकबतुम इस लफ्ज को पढ़ेंगे, किसी दूसरे डायलेक्ट में यानी किसी दूसरे कबीले का जो कि जो अरबी जुबान थी ना उस कबीले के अरबी जुबान के मुताबिक उसको अकबतुम पढ़ेंगे, ठीक है और किसी और कबीले की डायलेक्ट में अकब तुम पढ़ेंगे। तो ये किरातों का डिफरेंस कहलाता है, ठीक है ये किरातों का डिफरेंस कुरान के अंदर पहले रोज से है, ये कोई बाद में पैदा नहीं हुआ कि प्रिजर्वेशन के अंदर कुछ कमी बेशी रह गई कुरान के तो इस वजह से लोगों ने जो है वो उसको तब्दील कर लिया, नहीं ये पहले दिन से है ये, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाइश पर है ये। क्या आप खुद अल्लाह ताला से फरमाइश करी थी कि मेरी जो कौम है ये एक लहजे में अरबी नहीं बोलती है, तो अल्लाह आप हर एक के लहजे में जो है वो कुरान को नाजिल फरमा दें, तो इस वजह से 20 लहजे जो हैं वो एक्चुअली मनकूल हैं, ठीक है उनमें से अब कितने मौजूद रह गए हैं वो तकरीबन अब 10 मौजूद रह गए यानी बाकी रह गए, ठीक है, और 10 में से भी 7 जो हैं वो ज्यादा मशहूर हैं। तो सबा करा के, सबा करा के कारी माशाल्लाह आज बहुत बड़ी तादाद में उम्मत मुस्लिमा में मौजूद हैं, जो कि 7 किरातों की बाकायदा मश्क करते हैं और पूरे कुरान को 7ों किरातों में याद करते हैं, एक किरात में नहीं, 7 किरातों में। हमसे एक किरात में याद नहीं होता, ठीक है, जो हफ्स की किरात है जिसमें कि हम कुरान पढ़ते हैं, वो एक किरात है खाली, ठीक है। और जो माशाल्लाह मेहनत करने वाले होते हैं इस लाइन के अंदर, वो 7 किरातों में कुरान को याद करते हैं सबसे। यानी मेरे लिए बस एक ही मिसाल मुझे याद रहती है कि वद्दुहा, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सज्जा। तो एक दूसरी क़िरत जो है वो, जिसका क्या नाम है मुझे याद नहीं है, वो क्या कर पढ़ते हैं, वद्दुहै वल्लैलि इज़ा सजै, ठीक है। तो ये एक दूसरी क़िरत है। तो इस तरह से क़िरतों का डिफरेंस होती है, आपने सुना होगा यकीनन। तो एक ये तीनों किरातें भी मुख्तलिफ क़ुरा से मनकूल हैं, लफ्ज़ आकब तुम की ही, और लफ्ज़ और हज़रत क़तादा रहमतुल्लाह अलैह और मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से इन तीनों लफ्ज़ों के मानी गनीमत के भी मनकूल हैं। इस सूरत में मानी आयत के ये होंगे कि जिन मुसलमान शोहरों की औरतें कुफार के कब्जे में चली गईं और शर्त सुलह के मुताबिक कुफार ने उनके महर मुसलमान शोहरों को अदा नहीं किया, फिर मुसलमानों को माल गनीमत हासिल हुआ, तो उन शोहरों का हक माल गनीमत से उनको अदा कर दिया जाए, ठीक है। तो ये भी एक इसकी फॉर्मेट हुआ था, ठीक है। माल गनीमत जब जब बाद में लड़ाई वगैरह हुई बदर की, ओहद की, खंदक की, तो उसमें इस तरीके से कॉम्पेंसेट कर दिया गया उन मुसलमान शोहरों को जिनको पेमेंट नहीं हुई थी। अच्छा, क्या मुसलमानों की कुछ औरतें मुर्तद होकर मक्का मुकरमा चली गई थी, ठीक है, यानी क्या ऐसा हुआ भी था? तो उसके बारे में फरमाते हैं कि इस आयत में जिस मामले का हुक्म बयान किया गया है उसका वाकया बाज़ हज़रात के नज़दीक सिर्फ एक ही पेश आया था कि हज़रत अयाज़ बिन गनम कुरैशी की बीवी उम्मुल हकम बिनते अबी सुफियान मुर्तद होकर मक्का मुकरमा चली गई थी और फिर ये भी इस्लाम की तरफ लौट आई थी, यानी बाद में मुसलमान हो गई थी। और हज़रत इब्ने अब्बास हज़रत ने कुल 6 औरतों का इस्लाम से इनहराफ और कुफार के साथ मिल जाना जिक्र फरमाया है, जिनमें से एक तो यही उम्मुल हकम बिनते अबी सुफियान थी और बाकी 5 औरतें वो थीं जो हिजरत के वक्त ही मक्का मुकरमा में रुक गई थीं और पहले ही से काफिर थीं, ठीक है। यानी इब्ने अब्बास ने फिर उनका इनहराफ क्यों क्यों जिक्र फरमाया? तो इनहराफ का फिर अब ये मतलब दिया जाएगा कि उन्होंने अपने शोहरों का साथ देने से इनकार कर दिया था, ठीक है, ठीक है। तो वो ये नहीं कि मुसलमान होने के बाद वापस पलटी थी, बल्कि वो शोहरों से उन्होंने इनहराफ किया था, इस्लाम से इनहराफ नहीं किया था, तो वो पहले से ही काफराई थी, काफरा थी। जब कुरान की आयत नाजिल हुई जिसने मुस्लिम और काफरा के निकाह को तोड़ दिया, उस वक्त भी वो मुसलमान होने के लिए तैयार नहीं हुई। इसके नतीजे में ये भी उन औरतों में शामिल की गई जिनका महर उनके मुसलमान शोहरों को कुफार मक्का की तरफ से वापस मिलना चाहिए था, जब उन्होंने नहीं दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत से उनका यह हक अदा किया, ठीक है। यानी इन चीज़ों को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, मेहर का अदा करना, किसी बंदे का कोई हक जब अल्लाह ताला ने रख दिया ना, ठीक है, तो अब उसका हक जो है वो अगर उस वक्त सीधे तरीके से अदा नहीं हो सकता, तो जंग के बाद नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने इन चीज़ों को यानी याद रखा था, ठीक है, लिख के रखना, हो सकता है किसी सहाबी से लिखवा भी लिया हो कि भाई इसका इतना था, इसका इतना था, इसका इतना था, और इस चीज को याद करके रखा था कि जब लड़ाई हुई तो उसके बाद, हालांकि लोग शहीद होते हैं, यानी घरों के अंदर जाहिर है कि एक बड़ी मुश्किल आती है, लोगों को बहुत गमो अंदोह होता है, जंग के बाद क्या हालात होते हैं, ठीक है, तो उन सब चीजों के बावजूद जिसका पैसा ड्यू था और अल्लाह ने ड्यू रख दिया था उसकी पेमेंट करी, ठीक है। तो इन माली मामलात का कितना ज्यादा जो है वो ख्याल किया जाता था, ठीक है, और ये करना चाहिए जाहिर है, ठीक है। यानी इन चीजों को लाइटनिंग नहीं देना चाहिए कि हाँ भाई किसी से कर्ज लिया था तो बात आई गई हो गई और क्या कहते हैं रात गई बात गई, ठीक है। वो कौन देता है जी किसी कर्ज, छोटा मोटा था या ज्यादा ज्यादा था, वो डिमांड नहीं कर रहा तो चलो हम भी नहीं देंगे, नहीं भाई, आपको देना है, ये चीजें जो होती हैं उनका हिसाब करना पड़ेगा और ये बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत का सबब बन जाएगा। इससे मालूम हुआ कि मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा चले जाने और मुर्तद होने का तो सिर्फ एक ही का वाकया था, यानी ये जो उम्मुल हकम बिनते अबी सुफियान, बाकी पांच औरतें पहले ही से कुफर पर थीं और कुफर कुफर पर कायम रहने की वजह से उन मुसलमानों के निकाह से इस आयत की बिना पर निकल गईं, इसलिए उनको भी इस जिमन में शुमार किया गया है। और एक औरत जिसका मुर्तद होकर मक्का चले जाना मजकूर हुआ है, ये भी बाद में फिर मुसलमान हो गई थी। और बगवी ने, यानी इस तफसीर कुरतुबी में यह लिखा हुआ है, और बगवी ने बरवायत इब्न अब्बास नकल किया है कि बाकी पांच औरतें जो इसमें शुमार की गई हैं वो भी बाद में मुसलमान हो गई थी। जैसे कि मक्का मुकरमा के अक्सर लोग फिर बिलाखिर मुसलमान हो ही गए थे, और फतह मक्का के मौके पर सारे मुसलमान हो गए थे, इल्ला ये कि उन लोगों के जिनको के बाकायदा नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म पर कतल किया गया था। अच्छा, जब डिवीजन हुआ इंडो पाक, तो शायद इंडियन बैंक ने पाकिस्तान को पूरे पैसे नहीं दिए थे। हाँ, हमने भी सुना तो है इस तरह की बातें, लेकिन बहरा तो ये तो यानी चलता रहता है इस तरह की चीज़। अच्छा, औरतों की बैत क्या के जो टॉपिक है वो भी शुरू कर लेते हैं, 5 मिनट कम से कम है हमारे पास। तो फरमाते हैं, या अय्युह नबी इज़ा जा अकल मोमिनात तो युबाइना का, इस आयत में मुसलमान औरतों से एक तफसीली बैत लेने का जिक्र है जिसमें ईमान व अकायद के साथ अहकाम शरिया की पाबंदी का भी मुआहदा है। ठीक है, यानी एक मुआहदा होता है ये ना कि भाई जुबान से आप किसी चीज को स्पेल आउट कर देना कि मैं ये करूंगा या मैं ये करूंगी, तो इम्प्लिसिट या एजम्पशन जो होती है ना उसको तकवीयत मिल जाती है। ठीक है, तो इस वजह से जुबान से कहना जो है ना इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि भाई ये तो बात अंडरस्टूड है, भाई मुसलमान हो गए तो अब अंडरस्टूड है कि भाई ये तो करना ही है। भाई ठीक है, अंडरस्टूड है ये बात, बेशक अपनी जगह पर है कि जब आपने कलमा पढ़ लिया, अल्लाह ताला की वहदानियत को मान लिया, नबी अलैहिस्सलाम को नबी मान लिया, तो अंडरस्टूड तो है कि आप उनकी सारी बात मानेंगे, लेकिन एक ह्यूमन नेचर भी होती है। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमारी तबीयतें बनाई है ना, तो अल्लाह ताला को हमारी तबीयतों का पता है कि इनकी तबीयतों के ऊपर किन चीजों का ज्यादा असर होता है, किन चीजों का कम असर होता है। तो अगर ये किसी चीज को जुबान से स्पेल आउट कर देंगे ना, तो अब जो है ना ये अपने आप को तबीयतन ये अपने आप को बाउंड कंसिडर करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से जुबान से कहने की बहुत ज्यादा अहमियत है हमारे दीन के अंदर। और ये इंसानी तबीयत जो है ना ये बड़ी अजीब चीज है, हम बहुत सारी चीजों को एज्यूम कर लेते हैं कि नहीं ऐसा ही होगा, लेकिन वो इंसानी की तबीयत बड़ी अजीब होती है। मिसाल के तौर पर पिछले दिनों बस मेरे जहन में कोई बातें आ रही थी, अभी इतनी क्लियर वो याद नहीं आ रही, लेकिन वो क्या बात थी कि किसी का कुछ कह देना वो इतना इफेक्ट रखता है हमारे ऊपर कि बजाहिर बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के लोग भी, जो कि यानी होता है ना कि किसी की बात नहीं माननी, बस जी मैंने तो अपनी मर्जी चलानी है, ऐसे लोग भी जो है ना अगर उनके सामने कोई चीज आके कोई कह दे ना, ठीक है, तो वो भी यानी फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यानी इसकी एक बड़ी यानी इसकी मिसालें तो बेशुमार होंगी, लेकिन मेरे जहन में मिसाल आ रही थी, बस इस वक्त वो मिसाल याद नहीं आ रही, लेकिन आप खुद अपने जरा गौर करें तो ऐसा होता है कि मतलब हम अजीब लोग हैं कि बजाय जो है वो ऐसे लगते हैं कि जैसे किसी की बात नहीं माननी है, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों की बात मान लेते हैं। एक बच्चा भी आगे कोई बात कह दे ना, तो हमारी सोच का अंदाज ही बदल जाता है बिल्कुल। ठीक है, इतना इफेक्ट होता है अल्फाज का। तो बहरहाल, तो ये जो है जो बैत है तो इसके अंदर जुबानी मुआहिदा है असल में ना, ये एक्सप्लिसिटली। ठीक है, साबिका आयात जिनके सियाक में ये आयत बैत आई है, यानी जिनके कॉन्टेक्स्ट में ये बैत वाली आयत आई है, वो अगरचे उन मुहाजरात के ईमान का इम्तिहान लेने करने के सिलसिले में है और ये बैत उनके इम्तिहान ईमान की तकमील है, लेकिन अल्फाज आयत आम है तो मुस्लिम मुहाजरात के साथ मखसूस मखसूस नहीं, बल्कि सब मुसलमान औरतों के लिए आम है। ठीक है, जैसे पहले भी बात हो चुकी है कुरान के क्लास में कि कुरान के अंदर दो किस्म के अहकाम होते हैं, एक को कहते हैं खास और दूसरे को कहते हैं आम। ठीक है, तो खास का मतलब जैसे उर्दू जुबान में भी खास के भाई वो उसके लिए खास था। ठीक है, मिसाल के तौर पर बुखारी शरीफ की एक हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ लोगों को जो कि बाहर से आए थे मदीना मुनव्वरा, ठीक है, और मुसलमान होने का के लिए आए थे, तो मुसलमान हो भी गए थे, लेकिन उनको मदीना मुनव्वरा की आबो हवा रास नहीं आई और वो बीमार पड़ गए, अजीब किस्म की कोई उनकी बीमारी हो गई। सही है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि मदीना मुनव्वरा के बाहर आउटस्कर्ट्स में बैतुल माल के ऊंट चरते हैं, और उनके एक सहाबी जो है वो उनके ऊंटबान हैं, यानी क्या कहते हैं, शुतरबान, ऊंट 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 का ख्याल करने वाले। तो तुम ना उनके पास चले जाओ और उनसे कहो कि मैंने तुम्हें भेजा है कि तुम उन ऊंटों का दूध और पेशाब पियो, उन ऊंटों का दूध और पेशाब ये तुम लोग पियो, ठीक है, तो इससे तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। तो ये बुखारी शरीफ की रवायत है, तो यानी इस हदीस की सेहत में कोई इख्तलाफ नहीं है किसी को कि नहीं नहीं ये हदीस गलत है, नऊज बिल्ला, या ये घड़ी हुई हदीस है, नहीं, हदीस बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अब ये इसका मतलब क्या हुआ, ऊँट का दूध तो सभी पीते हैं, वो तो जाहिर हलाल है, लेकिन क्या ऊँट का पेशाब भी हलाल है कि नहीं है? ठीक है, तो अब इसके ऊपर फुकहा के दरमियान लंबी डिस्कशन है, बहुत जबरदस्त किस्म का ये एक यानी मसला है कि क्या ऊँट का पेशाब हलाल है कि नहीं है। सही है, तो अब उसमें जिन्होंने कहा कि हलाल है, उन्होंने जाहिर इस हदीस की जाहिर को देखा कि भाई हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म किया था लोगों को पीने के लिए, ठीक है, और जिन्होंने कहा कि नहीं हलाल नहीं है, तो उन्होंने फिर क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई इतनी सारी दूसरी हदीसें मौजूद हैं जिसके अंदर पेशाब जो है वो नजासत है और उससे बचने का हुक्म दिया गया है, और पेशाब का जो है उसके लगने से अजाब कब्र की वईद सुनाई गई है। ठीक है, तो इस वजह से ना ये जो वाकया था ये बेशक हुआ था, लेकिन ये खास था, ये उन लोगों के लिए खास था, ये आम नहीं था। ठीक है, तो बिल्कुल जिस तरीके से इस वाकये के अंदर खसूसियत और उमूमियत वाली डिस्कशन है, उसी तरीके से कुरान के अंदर भी खसूसियत और उमूमियत वाली डिस्कशंस आती हैं मुख्तलिफ मौके पर, मौके पर। तो ये वाली जो आयत है, बैत वाली आयत, इसके बारे में फुकहा का क्या मजहब है कि ये आम है, ये सिर्फ उन औरतों के लिए नहीं है जो कि मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आई थी, बल्कि ये सारी मुसलमान औरतों के लिए यानी ये एप्लीकेबल है, बल्कि मुसलमान औरतें तो क्या, जाहिर है क्योंकि इसमें यानी अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगी, इस तरह की बात है ना, तो इस वजह से औरतों के साथ ये स्पेसिफिक हो गई है, लेकिन आप पेशाब से कराहियत पैदा करना था ताकि वो आदी हो जाए शायद, चले आप तो लगता है बड़े हो जाएंगे ना, तब तो आप फकीर बनेंगे बड़े होकर। नहीं, बहरहाल अच्छा, तो फरमाया कि इस आयत में मुसलमान औरतों से एक तफसीली बैत लेने का जगह, थोड़ी सी हंसी मजाक भी होनी चाहिए ना काश में। ठीक है, तो फरमाया कि जिसमें ईमान व अकायद के साथ अहकाम शरिया की पाबंदी का भी मुआहदा है, साबिका आयात जिनके सयाक में ये आयत बैत आई है वो अगरचे उन मुहाजरात के ईमान का इम्तिहान करने के सिलसिले में है, और ये बैत उनके इम्तिहान ईमान की तकमील है, लेकिन अल्फाज आयत आम है, नौ मुस्लिम मुहाजरात के साथ मखसूस नहीं है, बल्कि सब मुसलमान औरतों के लिए आम है। और वाकया भी इसी तरह पेश आया कि बैत मज़कूरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करने वाली सिर्फ नौ मुस्लिम मुहाजरात ही नहीं थीं, दूसरी कदीम औरतें भी शामिल थीं, यानी जो पहले से मुसलमान थी ना वो भी इस बैत के अंदर शामिल थीं। ठीक है, जैसे कि सही बुखारी में उम्मे अतिया अतिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से, और बसनद बगवी उमैमा रजी अल्लाह ताला बिनते रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा से मनकूल है। हजरत उमैमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि मैंने चंद दूसरी औरतों की मईयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अहकाम शरईया की पाबंदी का मुआहदा इस बैत में लिया, इसके साथ ये कलिमात भी तलकीन फरमाए कि फी मस्तता व अतक तुन्ना, यानी हम उन चीजों की पाबंदी का अहद उसी हद तक करते हैं जहां तक हमारी इस्तेताअत व ताकत में है। ठीक है, यानी बाकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेताअत ताकत का भी अपनी तरफ से एडिशन किया इस बैत के अंदर, यानी जैसे है ना कुरान के अंदर भी तो हुक्म है ना तकवा का कि फत्तकुल्ला, क्या है, इस्तताअतुम, किसी को याद है वो आयत का, मस्तताअतुम, यानी अपनी 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 इस्तेताअत के मुताबिक, अपनी इस्तेताअत के यानी जितनी तुम्हारी इस्तेताअत है ना उतना अल्लाह ताला से डरो। ठीक है, मस्त आतुम के अल्फाज हैं वो। ठीक है, उसी तरह से इन औरतों के साथ भी इस्तेआत और ताकत की भी बात रखी। तो मैमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने इसको नकल करके फरमाया कि ऐसे मालूम हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत व शफ़क़त हम पर खुद हमारी ज़ात से भी ज़ायद थी कि हमने तो बिला किसी कैद व शर्त के अहद करना चाहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शर्त की तलकीन फरमा दी ताकि किसी इज़्तिरारी हालत में खिलाफ वर्जी हो जाए तो वो अहद शिकनी में दाखिल ना हो। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत थी कि इतना ख्याल किया कि भाई, क्योंकि जब बंदा जुबान से कोई बात कह देता है ना और फिर वो उसके ऊपर पूरा ना उतर सके ना, तो ये उसके लिए एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी उसके ऊपर बहुत होता है। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो है ना एक प्रोविजन पैदा कर दी इन औरतों के लिए, इनकी इनके साथ नरमी की खातिर और इनके साथ शफकत का इजहार करते हुए कि भाई तुम्हारी ताकत अगर कभी जवाब दे जाए तो गलती हो जाएगी ना, तो उस पर तौबा कर लेना, अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। ये मत समझना कि बस अब तो मैं गई, अब नाउ आई एम अ होपलेस केस, नाउ आई कैन नॉट डू एनीथिंग एंड आई एम नॉट इवन वर्दी ऑफ दिस, एंड ये वो इस तरह की जो बातें शैतान फिर डालता है। तो नहीं, ये वाइदुल्लाहु मस्तता मिन कुवा नहीं है, नहीं, ये बिल्कुल अलग चीज़ है, मैं तकवा की बात कर रहा था। ठीक है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे हम रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इस टॉपिक को पे कंटिन्यू करेंगे, टाइम ओवर हो चुका है। तो कोई सवाल? ठीक है, फिर आज काफ़ी कम लोग थे क्लास में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।